फिर इसके बाद अगली आयत देखते हैं, वमिन आयाति ही अंतकुमस्समा उवल अर्दु बि अम्री ही, और ये भी उसकी निशानियों में से, किसकी, मेरे रब की, मेरे प्यारे रब की निशानियों में से ये बात है, क्या अंतकुमस्समा उवल अर्द, कि ये के आसमान और जमीन इसी के हुक्म से कायम है, कैसे कायम है, बगैर सतूनों के, सूरत रात में आता है बिगैरी अमदिन तरौनहा, बगैर किसी सुतून के तुम देखते हो कि आसमान खड़े हुए हैं, कुछ भी सहारे नहीं दिखते लेकिन ये गिरते नहीं। सुम्म इज़ा दाअकुम दावतन, फिर जब वो तुम्हें एक ही दफा जमीन में से पुकारेगा, मिनल अर्दी इज़ा अंतुम तखरुजून, फिर तुम जमीन से निकल खड़े होगे, उसकी पुकार पे तुम बैठे नहीं रहोगे और तुम उसकी तरफ चलते आओगे। इस आयत को कैसे समझेंगे हम, अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन के कायम रहने की निशानी बता दी। अब सवाल पैदा होता है कि इसमें क्या निशानी है। अब देखिए कि आसमान कितना बड़ा है और सहारा दिखता भी कोई नहीं लेकिन खड़ा हुआ है, और जमीन कितनी बड़ी है लेकिन अपनी जगह से हिलती नहीं, जहां तक अल्लाह का हुक्म जब होता है तो फिर जलजलों की सूरत में हिलती है, इसके अलावा नहीं हिलती। हमारे लिए इसमें क्या सबक है कि जब ये इतने बड़े हो के अल्लाह के हुक्म पे रुक गए तो तुम अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस क्यों करते हो। बीवी और शौहर होने की कुछ हदें हैं, उनके ताल्लुकात की हदें हैं, उनके मामलात की कुछ हदें हैं, फिर तुम उसको क्यों नहीं महसूस करते, तुम क्यों पीछे जाते हो। फिर इस तरह एक और भी इसमें इशारा हो सकता है, और वो क्या है कि देखो आसमान तो अपनी जिम्मेदारियां अदा करते करते थका नहीं, उसने तो आज तक नहीं कहा कि मैं थक गया बारिश दे दे के, मैं थक गया आसमानों से चीजें बरसा बरसा के, तो शोहरो तुम क्यों थकते हो। तुम्हारी जुबान से ऐसे जुमले क्यों निकलते हैं कि मैं थक गया तुम लोगों की खिदमत कर करके, और जमीन तो अपने अंदर से अनाज उगाते उगाते नहीं थकी, तो और तो फिर तुम क्यों थकती हो। यानी जिम्मेदारियों का एहसास है इसमें, लिमिटेशंस हैं। बज़ाहर आप देखिए कि मर्द जो है वो ज्यादा मजबूत आसाब के मालिक होते हैं, यहाँ आसमान का कायम रहना मर्द की आसाबी पुख्तगी की तरफ भी इशारा देता है कि देखो बात बात में गिरने की बातें ना करो, तुम अपनी मर्दानगी को कायम रखो, अपना रोब कायम रखो। वो औरत है, वो कमजोर है, हो सकता है कि हालात ऐसे हों कि औरत अपना सब्र का दामन छोड़ दे, लेकिन तुमने कायम रहना है अपनी बात पे, ये तुम्हारी मर्दानगी है। और फिर देखो अगर दुनिया में तुम अल्लाह के हुक्म पे नहीं कायम रहते तो एक दावत पे तो सबने पुकार पे लब्बाई कहना है, और फिर इज़ा अंतुम तखरुजून, तुम्हें निकलना है, लिहाजा दुनिया में रब की हुक्म पे चल पड़ो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बाकी मामले आसान कर देगा। यानी इसमें एक इंसान जो घर बनाता है, शोहर और बीवी का आपस का ताल्लुक, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह का भी फरमा बरदार रहना है, उसकी पुकार पे भी जाना है, सुबह बिस्तरों से उठना है, यानी या उठ बिस्तरों यानी जमीन से निकलने से मुराद क्या है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो इन्हीं लज्जतों में नहीं पड़े रहना, इन्हीं ख्वाहिशात के अंदर आके अपनी नमाजों को नहीं छोड़ना, अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ना। यानी बास दफा आप देखिए कि जब शोहर बीवी का ताल्लुक बड़ा खूबसूरत होता है तो ये अल्लाह ताला से ताल्लुक कमजोर करने का बायस बन जाता है, उन्हीं की मोहब्बतें उन्हीं की ख्वाहिशात नहीं। फरमाया तुम्हें हंजला की तरह, अगर अपनी नौ नई ब्याही दुल्हन को छोड़ के अल्लाह के मैदान के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने की जरूरत पड़े तो चले जाओ, तुम्हें नबी सल्लम की तरह वइज़ ग़दउत मिन अहलिका, अपनी बीवियों को छोड़ के घर से अल्लाह के दीन के लिए निकले तो तुम्हें निकलना पड़ेगा। और क्या है जिहाद के लिए तो कौन कहाँ निकलेगा अगर फजर के लिए कोई नहीं निकलता। बाज दफा देखा गया बाज मर्द पक्के नमाजी होते हैं, मस्जिद में जाने के आदी होते हैं फजर पे भी, लेकिन शादी होती है तो नमाजें पहले शुरू में डिले होने लगती हैं और फिर छूटी जाती हैं, फिर इतने मगन होते हैं। हमारी एक तकलीफ दे हालत है, वो क्या कि हम जितने ज्यादा खुश होते हैं उतने अल्लाह से दूर होने लगते हैं। अब ये शादी के दिन है, अब हनीमून के दिन है, अब दावतों के दिन है, अब पहनने ओढ़ने के दिन है, उतने ही रब के हुक्मों से बेनियाज होने लगते हो। तुम सोचो आसमान या जमीन कभी हुक्मों की नाफरमानी नहीं करते तो फिर तुम क्यों करते हो, लिहाजा उसी की बात मानो, किसकी, अल्लाह की। क्यों मानो? इसलिए कि सब उसकी मान रहे हैं। वलहू मन फिस समावाति वल अर्द, और उसी के लिए है जो आसमानों और जमीन में है। कुल्लुल लहू कानितून, सारे के सारे उसी के फरमाबरदार हैं, तुम क्यों नहीं उसके बनते? आसमान भी उसका, जमीन भी उसकी। गोया के आसमान शौहर, जमीन बीवी, तो फिर तुम भी उसके बन जाओ। जुबान से तो कहते हो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो दिल से भी उसके बन जाओ। इन्ना लिल्लाही, हम अल्लाह के हैं, तो अल्लाह कहते हैं फिर बन जाओ मेरे, जैसे आसमान मेरा जमीन मेरी है। कैसे बनते हैं अल्लाह का? उसकी बात मान के, उसके हुक्मों पे चल के। कुल्लुल लहू कानितून, सब उसके कानित हैं। कनूत किसको कहते हैं? दवाम और आजजी। दवाम किसको कहते हैं? स्टेबिलिटी, हमेश की, कंटिन्यूसली। ये नहीं कि दिल चाह तो अल्लाह की बात मान ली, और ना दिल चाह तो कई दिन नमाज भी ना पढ़ी। आजिज भी बनना है और बात भी मानते रहना है। यानी गोया कि इसमें हमें इस चीज का दर्स दिया गया कि हालात जैसे भी हों, मौका जो भी हो, लेकिन तुमने अल्लाह ताला की बात मानने से अपने आप को पीछे नहीं रखना। और कौन सा रब? वहुवल्लज़ी यबदउल खल्का थुम्मा युईदुहू वहुव अहवनु अलैह। ये वो जात है जो पहली दफा तखलीक को पैदा करता है, फिर दोबारा भी उसकी को पैदा करेगा, और ये उसके लिए बहुत आसान है। वलहुल मसलुल आला, और उसी के लिए आला मिसाल है, या उसकी मिसाल बहुत आला है। फिस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन में। वहुवल अजीजुल हकीम, और वो गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। यानी वही तो है जो खिलकत की इब्तिदा करता है। पहली दफा उसने पैदा किया इंसान को, कैसे पैदा किया? मट्टी से बनाया, फिर नुतफे से बनाया, फिर वही इसका इरादा करेगा। कब? क्यामत के बाद, दोबारा मट्टी में जाने के बाद, जब जिस्म घुल जाएंगे तो इसी से पैदा करेगा, दोबारा तुम्हें दुनिया में लाएगा। और वहु व अहवनु अलैह, ये उसके लिए मुश्किल नहीं, ये आसान है। तुम क्यों महसूस करते हो ये सब कैसे होगा? ये बहुत आसान है। वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन में इसी की शान बालातर है। यानी वही है सबसे आला, उसकी शान है, तुम्हारी शान कुछ नहीं। तुम अपने आप को बड़ा ना बनाओ, शान उसी की बड़ी है। और वहुवल अजीजुल हकीम, और वो गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। यानी वो गालिब और हिकमत वाला है। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी जो सिफात बयान की, तख्लीक के बाद दोबारा इयादा, बात तो वाज़े है, दुनिया के बाद नई दुनिया बसाने की बात है, लेकिन शोहर और बीवी के मामले में इसकी क्या ज़रूरत थी बात करने की? एक तो वही बात है जो पीछे ली आज से चल रहा है, आखिरत से डराया गया कि देखो अगर अल्लाह के हुक्मों पे नहीं चलोगे तो फिर याद रखो कि एक दिन दोबारा बनाए जाओगे। लेकिन शौहर और बीवी के ताल्लुकात के बारे में इस आयत क्या है? बड़ी खूबसूरत बारीकी है, और मुझे नहीं यकीन कि कभी हमने इन आयतों को इतनी तवज्जो भी दी हो, लिटरली भी हमने कभी इनको समझा हो। हम तो इनको बस पढ़ते हैं सुपारा बड़ा पढ़ने के लिए। कुरान खानी में सुपारा ख़त्म करना है, तरावी में सुपारा ख़त्म करना है। एक एक लफ्ज़ कैसे मोतियों से अल्लाह ताला ने पिरोया हुआ है कि देखो शौहर और बीवी, तुम्हारी ज़िंदगी में बास हालात ऐसे आ सकते हैं कि घर टूटने के करीब हों, घर टूट जाए, तलाक तक की नौबत आ जाए, तो गम क्यों करते हो? वो रब जिसने एक दफ़ा पैदा करके दोबारा बना सकता है, वो तुम्हारे टूटने के करीब घरों को जोड़ भी सकता है, वो टूटे हुए घरों को जोड़ सकता है, वो तुम्हारे मिजाज के अंदर तब्दीलियां पैदा कर सकता है। अगर कहीं खुदा ना खास्ता तुम्हारे आपस के ताल्लुकात इतने बिगड़ गए कि तुम्हें लगता है अब मेरा इस घर में निभा नहीं हो सकता, तो एक बार फिर सोच लो, एक बार फिर पलट के पीछे देख लो, अपने ही नक्शे कदम को देखते हुए देखो कि वाकई शायद गुजारा हो सके, शायद वापसी का कोई रास्ता हो। फिर अल्लाह से दुआ कर सकते हो कि अल्लाह ये घर तो टूटने के करीब है, लेकिन आप तो दोबारा बनाने पे तैयार हैं। वहुवा वनवलई, कोई ज़रूरत नहीं थी इस लफ्ज़ की यहाँ, यकीन करें। मानी के अतबार से आयत बिल्कुल मुकम्मल थी। वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहू वलहुल मसलुल आला, लेकिन यहाँ वहुवा अहवनु अलैह कह के हम इंसानों की रियायत की गई। तुम्हें बड़ा मुश्किल लगता है। हकीकत ये है कि शौहर और बीवी का ताल्लुक जो है, ये सिर्फ एक जिस्मानी ताल्लुक नहीं, कल्बी ताल्लुक भी है। और कल्बी ताल्लुक में तब्दीलियां आती हैं। कल्ब क्या है? बदलने वाली चीज, उलट पुलट होता है। अब जब दिल पलटते हैं तो बाज दफा इंसान की मोहब्बत में कमी आने लगती है, तब्दीली आती है। फिर जुबान पे काबू ना हो तो ये तलही बाज दफा इतनी बढ़ जाती है कि तलाक और खुला तक की बातें आने लगती हैं, निभा ना होने की बातें आने लगती हैं। अब जब इंसान उस कैफियत पे पहुंचता है ना, तो फिर इंसान की सोच समझ की सलाहियत खत्म हो जाती है। फिर वो सोच नहीं पाता, कहता बस खत्म, सब दरवाजे बंद, मैं इस घर में अब नहीं रह सकती, अब इस घर को तोड़ना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि घर को बचा लो, अल्लाह ताला से मदद मांगो, वो तुम्हारे टूटे हुए घरों को जोड़ सकता है। अपनी जुबान के बोले हुए लफ्जों को वापस ले लो और अपने मिजाज में तब्दीलियां पैदा कर लो, और उस रब से दुआ मांगो कि अल्लाह तेरे लिए तख्लीक को दोबारा पैदा करना मुश्किल नहीं तो मेरे भी घर को दोबारा बना दे। वो औरतें जो शोहरों की हिदायत से मायूस होके अब उनको छोड़ने का सोचती हैं, या वो शौहर जो बीवियों की बदमिजाजी से अब उनसे बिल्कुल कटने के लिए तैयार हैं, उनको एक दावत दी गई रखू के आखिर में कि सोच लो, सोच लो, उसके हाथ में आसान है, तुम उसके बन जाओ, वो तुम्हारा बन जाएगा। वलहुल मसलुल आला, उसकी मिसाल बड़ी खूबसूरत है। फिर समावती वलत, औरत और मर्द दोनों के मामले में वो दोनों का साथ देता है। अगर तुम औरत हो तो भी तुम्हारी बात सुनेगा, और अगर तुम मर्द हो तो भी सुनेगा। वहुवल अजीजुल हकीम, और वो गालिब है। किस पे गालिब है? तुम्हारे घर को बचा ले, तुम्हारे मामलात को दुरुस्त कर दे। अगर तुम्हारी आंखों से आंसू खत्म ही नहीं होते हर वक्त इस बात से कि मेरे शोहर को मुझसे मोहब्बत नहीं, मांगो उससे, देखना वो कैसे दिल बदल देगा। तुम मायूस हो चुके हो अपनी बीवी की हिदायत से, उस रब से मांगो। यानी एक सबक सिखा दिया हमें, सबक के आखिर में कि सारी कोशिशें तुम्हारी होंगी लेकिन तौफीक अल्लाह देगा। तुम रब के बन जाओ, रब तुम्हारा बन जाएगा। मन कान लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का बनता है अल्लाह ताला उसका बन जाता है। आइए एक दफ़ा इस रुकू की अब तिलावत सुनते हैं बड़ी मोहब्बत के साथ, और हर आयत पे जितना रब का शुक्र कर सकें कि वाकई अल्लाह तूने हमारे सीखने की इतनी बातें इस कुरान में रखी और हम इसको बगैर सीखे जिंदगी बसर करते हैं, फिर परेशान होते हैं कि जिंदगी में सुकून नहीं और खुशी नहीं।
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
हम इन आयात को जरा इस तरह से देखते हैं कि घर को पुरसुकून बनाने में क्या चीजें अमल दरामद हो सकती हैं, या कौन सी चीजें हैं जिससे घरों को सुकून दे बनाया जा सकता है, और खवातीन होने के नाते खास तौर पे हम इसमें अपनी जिम्मेदारियों को कैसे महसूस कर सकते हैं। तो पहले तो अगर ये देख लिया जाए कि बेसुकूनी की वजह क्या होती है, अब देखिए कि बल्कि मैं इससे भी पीछे बात शुरू करूंगी, इसलिए कि अमूमन हम लोग ये बात सुन के सिर्फ शौहर और बीवी तक रहते हैं कि शौहर और बीवी, लेकिन घर सिर्फ शौहर और बीवी से नहीं बनता। आप अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखें इस आयत को, तो जहाँ भी शादी होती है हमारे खास तौर पे कल्चर में, तो शादी सिर्फ लड़का और लड़की नहीं कर रहे होते, उससे पहले उनके खानदान के लोग भी होते हैं। एक लड़के का खानदान होता है, एक लड़की का खानदान, फिर उसमें शादी हुई, फिर उसके बाद दूसरी जनरेशन उनके बच्चों की सूरत में आती है। तो जब तक ये सारी चीजों को बीच में ना रखा जाए, घरों में सुकून नहीं आ सकता। अमूमन जो है हम ये तो कहते हैं कि होम स्वीट होम, या मेरा घर मेरी जन्नत, लेकिन घरों को जन्नत कैसे बनाया जाए, इसके लिए ज़रूरत है उस चीज़ को समझने की कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। अल्लाह ताला ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से यहाँ हमें ये बता दिया कि घर के अच्छे माहौल में शौहर और बीवी का किरदार क्या होना चाहिए। लेकिन अमूमन जो चीज़ मैंने महसूस की है कि जिसकी वजह से घरों में बेसुकूनी है, और यकीनन इसमें 90% जब वो शौहर और बीवी ही के मामलात के बीच में हो सकती है, तो मैंने जो चीज़ें नोट कर सकी हूँ, जो यानी जो चीज़ें मैं नोट कर सकी हूँ वो क्या हैं, एक तो ये कि बदगुमानियाँ होती हैं, यानी दोनों के बीच में बदगुमानियाँ आ जाती हैं, या अगर दूसरे भी लोग हैं तो उनके साथ बदगुमानी। इसी तरह एक और वजह होती है तरजीहात का फ़र्क, शौहर किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे के बैठते हैं और बीवियाँ जो हैं वो किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज कर लेती हैं इसकी वजह से। तीसरी वजह जो बेसुकूनी की देखी गई है वो क्या है कि मुश्तरका मकासिद का ना होना, यानी मकसद हयात ही फ़र्क है दोनों का। फिर इसी तरह एक और वजह जो होती है वो नफ्सियाती उलझने होती हैं, कोई कॉम्प्लेक्स होता है, शौहर की ज़ात में कोई कमी है, वो उसको छुपाने के लिए खामखा का रूप डालते हैं। बाज़ दफ़ा बीवी बहुत डोमिनेंट किस्म की पर्सनैलिटी में डेवलप हुई, घर वालों ने लाड किए नखरे किए, तो वो कुछ इस तरह की साइकोलॉजिकल रीजंस भी होती हैं। फिर इसी तरह एक और वजह जो बेसुकूनी की है वो क्या है कि दोनों का दीनी रुझान मुख्तलिफ होना, बीवी ज़्यादा दिन पहले ठीक चल रही थी, अब क्यों गड़बड़ हुई कि रुझान बदल गए, बीवी का रुझान दीन की तरफ गया, शौहर अभी अपनी उसी दुनिया में एंजॉय करना चाहते हैं। बाद जब शौहरों शौहर जो है वो पहले दिन पे आने लगते हैं तो बीवियाँ नहीं पसंद करती, ये एक वजह होती है। फिर इस तरह मसरूफियात का मुख्तलिफ होना जो यानी इन ताल्लुकात में ख़राबी पैदा करता है। फिर इसी तरह एक वजह होती है अच्छे ससुराली ताल्लुकात ना होना, ये किस ऐसा हिडन ताल्लुक है जो शौहर और बीवी के ताल्लुक के बीच में असरअंदाज होता है, कि इंसान यानी सिर्फ इस चीज़ पे तवज्जो देने लग जाता है कि मुझे सिर्फ शौहर के हकूक अदा करने और उसी को देखना है, और इस तरह के मामले में फिर वो बहुत ही ज़्यादा यानी पीछे हटते हैं। और बहुत सारी वजूहत इसी के अंदर आ सकती हैं, एजुकेशन लेवल का डिफरेंट होना, कल्चर का फ़र्क होना, फिर इसी तरह बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला के हुक्म का ना पता होना, शौहर होने के नाते पता ही नहीं शौहर अच्छा होता कौन है, बीवी होने के नाते ये नहीं पता अच्छी बीवी कौन होती है। और अफसोस की बात है कि आज हमारे मुल्क में आर्ट क्राफ्ट फन सिखाने के जगह जगह इदारे मौजूद हैं, मैक्रामे बनवा लो, ग्लास फ्लावर बनवाओ, पेंटिंग बनवाओ, लेकिन कोई इदारा ऐसा नहीं दिखता कि जहाँ एजुकेट किया जाए कि जिनकी शादियाँ होने वाली हैं उनको यहाँ जाके कोर्स करवा दिया जाए कि एक अच्छा शौहर कैसे बनना है और बीवी कैसे बनना है। और माँ को भी बड़ी फिक्र लगती है बेटी को तैयारी कराने की, मंगनी के बाद तो यही होती है कि इसको चंद खानों की तरकीबें सिखा दो, चाइनीज़ कुकिंग करवा दो, जो कभी इस महीने में एक दफ़ा करनी है उस पर फिक्रमंद होती हैं माँ, या कोई डिक्रिशन ताकि यानी जाहिरदारी पे बात आ गई, लेकिन मिजाज के अंदर क्या खूबसूरती आनी चाहिए, किस चीज़ से बीवी जो है वो एक अच्छी बीवी बन सकती है और घर के अंदर सुकून बनता है, ये बहुत ही कम होते हैं। और उसमें सब चीज़ों का देखेंगे कि बुनियादी वजह ये है कि दीन से नहीं जोड़ते, हमने अपने बच्चों को दीन से दूर किया तो उनकी दुनिया भी ख़राब हो गई, हमने जो तरीका डेवलप किया इनको रेस करने का इम्पेशेंट बना दिया, हमने इनको ग्रीडी बना दिया, हमने इनको ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया। अब ये सारे लफ्ज आप लिखें जरा, इम्पेशेंट, यानी मिसाल है एक शख्स है, उसकी शादी हुई, अब वो कोई भी हो सकता है, और आप इसको एक औरत से भी रिलेट कर सकते हैं कि एक औरत की शादी हुई, अब जो फरीक है वो इम्पेशेंट भी है, लिखें जरा आप सब, बेसब्रा भी है, सेल्फिश भी है, ग्रीडी भी है, ओवर कॉन्फिडेंट भी है, उसको लगता है कि मेरी राय जो है वो सबसे मौसर है। आप बताइए कि दूसरा फरीक कैसी जिंदगी गुजारेगा उसके साथ। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे इर्द गिर्द जो हमने नस्लें परवान चढ़ाई वो ऐसी ही चढ़ाई, उनको ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया, हमने उनको कहा तुम राइट, तुम्हारी शुरू से अहमियत है, तुम्हारी बात की अहमियत है, यू हैव योर ओन वे ऑफ थिंकिंग, शुरू से को एजुकेशन में डाल दिया, जिससे औरत और मर्द का जो फर्क था वो खत्म हो गया। पहले दौर में लड़कियां क्यों निभा कर लेती थी, कभी आपने गौर किया? या लड़के क्यों गुजारे लायक बीवियों के साथ भी अच्छी निभाते थे? क्योंकि ये देखा ही नहीं होता था, ये फील्ड ही नहीं था। यानी आप देखिए कि 12, 14, 15, 16 साल की उम्र में अमूमन शादियां होती थी पहले दौर में, घर वाले ही कर देते थे, हो जाती थी शादी, कहीं दादी कह गई थी तो उसके नाम पे हो रही है, कहीं बुजुर्गों ने कर दी तो हो गई। क्यों? कि उस मर्द ने उससे पहले कोई लड़की इस नज़र से देखी नहीं होती थी। अब अगर उसमें कोई कमी भी होती थी तो उसने कोई पहले आइडल्स नहीं बनाए हुए थे, जो आइडियल्स के बाद आइडल बन जाते हैं, तो वो उससे खुश होता था। आज क्या होता है, प्रेप, बल्कि उससे भी पीछे, साथ लड़की लड़का पलते हैं, दोनों एक साथ बैठते उठते चलते, फिर आप देखिए हाई स्कूल तक जाएं, आगे जाएं, फिर जॉब मिलती है तो वहाँ लड़के, हर जगह इतनी मिक्सिंग आ जाती है दोनों में कि वो लड़की कबूल ही नहीं कर पाती कि ये मर्द कोई मेरा एक यानी काबिले इज्जत शख्स है, या यानी इसको मुझे इज्जत देनी है। नतीजा क्या निकला कि वो फिर यानी मर्द की इज्जत ना हुई। तो इसी तरह यानी ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान को आज उन फराइज से दूर कर रही हैं कि जिसकी वजह से घर टूट रहे हैं। एक और वजह भी हो सकती है इसी के अंदर कि बच्चों के हसूल के बारे में, यानी बीवी चाहती है कि बच्चा चाहिए, शौहर चाहते हैं अभी नहीं चाहिए, बाज़ दफ़ा इसे ऑपोजिट भी कहानी देखी गई है। तो ये सारी खराबियां सामने आती हैं, नतीजा के निकला, यकीन करें कि अफसोस से कहना पड़ता है कि आज सिर्फ घर ही नहीं टूट रहे बल्कि रिश्ते भी टूट रहे हैं, रिश्तों का तकद्दस ख़त्म हो रहा है, बाप बेटी का रिश्ता मजरूह हो गया, भाई बहन का रिश्ता मजरूह हो गया, और उसकी वजह क्या है कि किसी ने उस पैगाम को समझा ही नहीं जो एक घर को पुरसकून बनाने वाला, पुरसकून बनाने के अंदर मददगार हो सकती है। तो लिहाजा ज़रूरत किस बात की है, सबसे पहली चीज़ तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि दीन से जुड़ना है। जितना घरों में दीन आता है, हर बंदे को अपने हकूक और फराइज अच्छी तरह समझ आते हैं और वो फिर उसको अदा भी करता है। आपको अगर अपनी बेटी के लिए वाकई एक आइडियल शौहर चाहिए तो दीनदार शौहर आपके सारे ख्वाबों की ताबीर हो सकती है। क्यों? कि वो आपकी बेटी को अगर खुश नहीं रखेगा तो जुल्म नहीं करेगा, धोखा नहीं करेगा, वो सब सबक दिखा के शादी करे और बाद में फिर उसके कई औरतों से ताल्लुक आते हो, ऐसा सदमा आप नहीं सहेंगे। उसकी ख्वाहिशात बाहर ज़्यादा हो, घर में कम हो, वो वक्त बाहर ज़्यादा गुजारे घर में कम, ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा इसके लिए यानी दीनदारी है, वरना याद रखिए जहाँ दीन नहीं होता ना, तो वहाँ मैंने देखा कि दो तरह के तबके हैं हमारे इर्द गिर्द। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े हुए नहीं हैं, यदि मैं जो बात करने लगी इसलिए आप समझेंगे नहीं, इसलिए मैं पहले तमहीद करना चाह रही हूँ कि हमारे माशरे में दो तबके हैं। एक वो है जो बिल्कुल जाहिल है, जहालत के नाम पे हराम को हलाल और हलाल को हराम कर रहे हैं, पता ही नहीं, इल्म ही नहीं, और एक वो है जो बहुत ही पढ़ गए, दुनियावी एतबार से ऐसे दर्जों पे पहुंच गए कि वो इतने ज्यादा मुंहजोर हुए कि जहाँ दुनिया में हर एक से बहस करते हैं वो अल्लाह ताला से भी बहस करते हैं। इन दो इंतहाई रवैयों में आपके सामने दो मिसालें रखूंगी कि आपको अंदाजा होगा कि क्या हो रहा है। आपको क्यों नहीं समझ आएगी, क्योंकि अमूमन हम जैसे लोग दरमियानी तबके के होते हैं, हो सकते हैं आप हाय और इस्तग़फ़ार और तौबा कहें लेकिन हकीकत में ये हो रहा है। एक खातून है तो बहुत ही परेशान, और उन्होंने यानी किसी भी दीन वाले से अपनी बात की और कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, और वो कहती हैं कि जब वो बात कर रही थी तो उनका सीना हंडिया की तरह उबल रहा था कि पता नहीं अल्लाह खैर करे होता क्या बात क्या है, और आखिर जो बात निकली वो वही कहने लगी कि मेरा शौहर है कहीं बाहर होता है, जब काम पे ऐसे आता है यानी मीन कुछ दिनों के लिए, तो उसका मसला ये है कि वो मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी पे नज़र रखता है। इन्होंने कहा कि क्या तुम्हारी बेटी है, सगी उसकी सगी नहीं है? तो उसने कहा कि नहीं, सगी बेटी है। हम लोगों के कहते कहती कि मुझे भी मालूम होता है, मुझे धमकियां देके वो मेरी बेटी से ताल्लुक कायम करता है, और अब इस वक्त मेरी बच्ची 7वीं जमात में पढ़ती है और 7 माह की प्रेग्नेंट है। मुझे बताएं मैं क्या करूं? रिश्ता टूट गया ना, बाप का रिश्ता बेटी से टूट गया। इसी तरह एक और, यानी कुछ खवातीन थीं, तो उन्होंने अपनी बात जो पेश की कि वो कहती हैं कि हम कई बहनें हैं, माँ बाप के आपस में बनी नहीं, माँ सीधी सादी खातून थी, बाप पढ़ा लिखा था, तलाक दे दी। अब 5-6 बहनें हैं, बाप सख्तगीर था, अब मारता बहन बेटियों को और अपनी ही बेटियों से ताल्लुक कायम करता। और फिर उसके बाद, यानी वो कहती है कि मुझे खुद नहीं याद कि मुझे किस उम्र में मेरे बाप ने पहली दफ़ा ख़राब किया। हमें तहखाने में ले जाके मारते और पाइपों से हमारी पिटाई होती और हम गुनाह की ज़िंदगी गुजार रही हैं। बताएं कि हमारी भी कोई बख्शिश होगी? अब ये हो सकता है किसी जाहिल माशरे की कहानियाँ कहें, लेकिन यूरोप में रहने वाली एक माँ जो है, उन्होंने शेयर किया कि किसी भी, यानी इस तरह के मामलों में कि ये ऐसा क्यों करते हैं, यानी किसी वेस्टर्न कम्युनिटी में रहने वालों से पूछा कि तुम लोग अपनी बेटियों को जवान होने के बाद घर से क्यों निकाल देते हो? जैसा कि आपने देखा है, 16-17 साल के बाद क्यों नहीं रखते? ये उम्र तो बहुत सेंसिटिव होती है। तो उस माँ का जवाब क्या था कि इसलिए कि अगर घर में मेरी 16-17 साल की बेटी है तो फिर मुझे ये डर है कि मेरा शौहर सिर्फ मेरा ही शौहर है या मेरी बेटी का भी शौहर बन चुका है। ये वेस्टर्न इलाकों की बातें, और यकीन करें कि बातें बहुत हैं। इस जगह बैठ के जेब नहीं देता कि इंसान ऐसी बातें करें, लेकिन कुछ मंजर तो आपने भी देखे होंगे कि जब बाप बेटी के सामने बैठ के बेहुदा मंजर देखे, जब घरों में मूवीज चलती हैं जहाँ बुरे काम होते हैं देखते हैं, और वो हया नहीं रही जो पहले रहती थी, क्या होगा? यानी मैंने खुद एक सच्ची वाक्य पढ़ा था कि किसी गांव में एक बाप था, यानी जागीरदार और वडेरे टाइप, और अपनी मूवीज देखा करता था, गंदी मूवीज होती थी, और अपने साथ कंपनी देने के लिए अपने मुलाजिम को बिठाता था। जवान उसका मुलाजिम था, उसको उसने साथ बिठा के दिखाता था कि मुझे कंपनी दो। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो उसको बोल, यानी उसके साथ, यानी उसने कोई मूवी देखी, उसके बाद उसको अपने किसी काम के लिए बुला रहा है, और वो नहीं उसके सामने आया। ढूंढते हुए उसको जाके देखा तो उसको अपनी ही उसी मालिक की बेटी के साथ उसके कमरे में देखा। उसके साथ वो अपनी उसकी बेटी के साथ ज्यादती कर रहा था। जब इसने उसको पकड़ा तो पूछा क्यों, तो कहने लगा कि मालिक, आपने जो मूवी मुझे दिखाई उसके बाद मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सका। कौन जवाब देगा इन बातों का? हम रब के नहीं होते ना, तो समझ नहीं आता। मैं ये मिसालें क्यों रखती हूँ आपके सामने, कभी आपने गौर किया? क्योंकि ये बातें जो है ना, ये सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं समझ आती, इसके लिए आपको इंसानों की किताबें पढ़नी पड़ती हैं। हम तो 1 मिनट में पॉइंट्स लिख के उठ के चले जाएंगे यहाँ से कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए और ये होना चाहिए, लेकिन हकीकत में दुनिया किस तरफ जा रही है आप महसूस नहीं कर सकते कि हम किस तबाही के किनारे पे हैं। मैं खुद वल्लाही उस लड़की को जानती हूँ कि जिसका सगा भाई उसके साथ बुराई करता है, और वो लड़की इस तरह की थी कि जैसे कहते हैं कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मेरी स्टूडेंट मेरी क्लास में आती थी, ये पाकिस्तान की बात है, कभी उसके चेहरे को मैंने खिला हुआ नहीं देखा, मुतमईन नहीं देखा, और जब उसने अपने दिल के पोल खोले, कहाँ दूसरे शहर में भाई रहते, सीए कर रहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारे घर वाले उम्मीदें लगा के बैठे हैं उसके ऊपर कि वो, यानी हमारे दिन फिरेंगे, बाप टीचर है किसी स्कूल का, और वो मेहनत कर करके बेटे को पढ़ा रहा है, हफ्ते में सिर्फ एक दिन वो बाप बेटा जब वो घर में आता है अपने माँ बाप के पास, और वो एक दिन अपनी बहन को इस्तेमाल करता है। खुदा की कसम खा के कहती हूँ, अगर उस बच्ची ने मेरे साथ ये शेयर ना किया होता तो मैं ये वाकयात भी आपके साथ शेयर ना करती कि ये हो ही नहीं सकते। और वो फूट फूट के आके रोती थी मेरे सामने कि बताएं मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा, क्या तुम्हें तुम्हें तुम अकल नहीं है, तुम नहीं मानती? कहती मुझे गन पॉइंट पे रखता है, वो मुझे इशारा करता है और कहता मैं तुम्हें मार दूंगा। और बाहर ऐसे लोग, ये जो भी मैंने दो बेटियों के साथ बुराई करने वाले बाप का बताया, इसका भी शिकल यही है कि फिर उसने पहले बेटियों से ताल्लुक बुरे किए, उसके बाद अपनी बेटियों को बदनाम करता है शहरों में, उसकी तस्वीरें और उनकी बातें, ताकि कल खुदा ना खास्ता उसका पोल अगर खुले तो लोग उसके, यानी उस पर हरफ ना रखें, कह सके कि मेरी बेटियां बुरी थी। सेम यही बात इसका भाई इसको कहा करता था कि देखो मैं तुम्हें उठवा दूंगा, मैं अपने दोस्तों के साथ आऊंगा और तुझे गायब करवा दूंगा अगर तूने किसी को बताया। माँ बाप तक बात निकली, और माँ बाप अल्लाह ताला हिदायत दे दे सिर्फ इस बात पे कि बेटा है और मुस्तकबिल है और तुम चुप कर जाओ और इसकी शादी कर दें और तुम्हारी कर दें, उस बच्ची की शादी की भी कोशिश की गई, लेकिन क्या, यानी अब देखिए कि नासूर बन जाते हैं ऐसे लोग माशरे के लिए कि जो इस तरह के हिस्से बन जाएं। और फिर पता चलता है कि इस्लाम ने ये जो खूबसूरत तरीके सिखाए हैं इसकी वजह क्या है कि हमने अपने आप को और अपनी नस्लों को दीन से जोड़ना है। आप अगर एक अच्छी बीवी बनना चाहती हैं आपको इस्लाम गाइड कर देगा, आप अच्छे शोहर बनना चाहते हैं ये मुमकिन ही नहीं कि आप अल्लाह ताला के साथ जुड़े बगैर बन जाएं। अल्लाह का खौफ जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा इंसान उस मामले को बेहतर तरीके से देखता है। वरना अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो मेरे पास लिस्ट मौजूद है कि एक अच्छी बीवी कैसी होती है, क्या खूबियां उसमें, लेकिन वो लिस्ट आपको उतना फ़ायदा नहीं देगी जितना आप कुरान को पढ़ के आपके दिल में अल्लाह का खौफ आएगा, अल्लाह ताला के साथ अपने मामले को बेहतर करेंगे। क्योंकि जब अल्लाह का खौफ होता है ना तो इंसान सबके हक देता है। फिर इसी में आप देखिए कि जब शादी होती है तो अमूमन क्या होता है हमारे माशरे में, तो यही होता है ना कि भाई माँ बाप बेटे की शादी करके लाते हैं, लड़की बहू बन के आ जाती है। अब ससुराल के साथ जो ताल्लुकात हैं क्या उस पर हमें बात करने की ज़रूरत नहीं? क्या आप किसी एक घर में सुकून ला सकते हैं अगर आपके इर्द गिर्द दोनों तरफ आग लगी हुई है? अगर आप अपने शोहर को अपने ससुराल वालों के खिलाफ करते हैं और आपका मियाँ जो है वो आपके माँ बाप की बुराइयाँ फिर करता फिरता है, आप बताइए क्या उस घर में खुशी होती है? कभी नहीं हो सकती। वो अलग भी रह लें, वो चांद पे भी चले जाएंगे, लेकिन कभी भी खुशी नहीं वो उस घरों में होती। तो वजह क्या है कि हम लोग दीन को अगर लाना चाहते हैं तो उसके लिए पहली बात है कि इज़दवाजी ताल्लुकात बेहतर हों, और इज़दवाजी ताल्लुकात बेहतर हो नहीं सकते जब तक हर बंदा अपने हकूक और फ़राइज़ को न पहचाने और उसके दिल में अल्लाह का खौफ ना हो। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मामलात रखे, मसलन अगर आप देखिए कि हमारे यहाँ जब शादी होती है तो नतीजा क्या निकलता है, उस शादी के मौके पे ही बच्चियों को एक ऐसा तासुर दे दिया जाता है कि बस तुम जिस ससुराल में जा रही हो वहाँ बहुत तुम पे जुल्म होगा, सास बड़ी जालम है, नंदे बड़ी खूनहवार है। क्या ये गानों में मैसेज नहीं मिलता? शायद आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी कभी सुनी हो कि पूरा जहन साजी करके भेजी जाती है कि देखो तुमने जाते अलग हो जाना है, साथ नहीं रहना। बस लोग तो ऐसे हैं कि वो वाकई इस तरीके से शर्तें लिखाते हैं कि हमारी बेटी ससुराल में नहीं रहेगी। और आप देखिए कि शादी के बाद लड़की बाप छोड़ती है ना, दूर हो जाता है ना, ससुर क्या बनता है? क्या उसमें उसको बाप का रूप नहीं दिखता? कि अल्लाह ताला ने ससुर को एक ऐसा महरम बना दिया कि खुदा न खास्ता बेवगी हो या तलाक हो जाए उसके बाद भी वो हुर्मत कायम रहती है। फिर इसी तरह आप देखिए कि दामाद, वो भी इसी तरह मामला, सास, इन सब को अल्लाह ताला ने इतनी मोहब्बत के रिश्ते दिए। क्यों? कि जब इन लड़की छोड़ के आती है ना तो उसको याद भाई याद आएंगे, तो अल्लाह ताला ने उस शौहर के भाइयों को रखा है अगर मतलब लिमिट्स में रहते हुए एक दूसरे के दीन का लिहाज करते हुए और कम से कम खैर ख्वाही के जज्बे पे अगर उनके साथ मामला अच्छा रखा जाए। अपनी बहन क्यों नन बहन नहीं बन सकती? कभी सोचा आपने नन बहन क्यों नहीं बनती? क्योंकि हम पहले से एक खास चीज़ सोच लेते हैं, एक तवक्को बना के आते हैं, और फिर उसके नतीजे में क्या होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, अब आप देखिए कि एक बच्चा उस घर में पैदा होता है जहाँ नानी भी, दादी भी है, दादा भी है, चचा है, फूफी है, उसको ज्यादा मोहब्बत मिलेगी या वहाँ बच्चा पैदा हो जहाँ माँ और बाप है और माँ भी सुबह उठ के काम पे जाती है और बाप भी, और वो सारा दिन बेबी सिटर पे रहता है? आप बताइए कौन सा बच्चा नेचुरल बर्थ होगा? वो जो खानदान में पलता है। आप देखिए कि बड़े जो होते हैं वो उम्र के साथ तजुर्बा आ चुका होता है, उनके अंदर सब्र आ चुका होता है, टॉलरेंस आती है। बाज़ दफ़ा जवान माएँ अपने बच्चों के तकाज़ों पर चिढ़ जाती हैं, गुस्से में आ जाती हैं, मारने लगती हैं, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है। ऐसे वक्त में अगर कोई बड़ा घर में है तो वो बच्चे को ज़्यादा अच्छा हैंडल करता है, तहम्मुल होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में क्यों इस्लाम मिला? हर नबी को 40 साल में मिला इसलिए कि इस उम्र में एक ठहराव आ जाता है। आप खुद भी अपने आप को महसूस करें जो 40s में गए, ज़रूर आप महसूस करेंगे कि 40s के बाद एक ठहराव आने लगता है इंसान के अंदर। तो अल्लाह ताला ऐसे मुआशरे पैदा करना चाहता है कि जिसके अंदर हर बंदा अपनी जगह पर रहे, फिर वहाँ हकीकी खुशियाँ हो। सिर्फ अगर एक चीज़ सोच ली जाए ना कि किसी के लिए दिल में बुरा ख्याल नहीं लाना। अगर एक घर है, मिसाल है, एक जवान कपल है वहाँ आता है, अगर वहाँ बूढ़े सास ससुर भी हैं तो उनका फ़र्ज़ क्या बनता है कि वो उनके जवान जज्बात की रियायत करें, उनको उस सोच पे ना लाएं कि जिस पे अपने आप को ला रहे हैं। यानी उनको अपने, बाज लोग ये कहते हैं ना, यानी छोटी छोटी चीजों पे फिर होते हैं ना, चप्पलें कहाँ से शुरू होती हैं, जहाँ बहू के एक एक कदम पे टोका टाकी शुरू हो जाती है, वो उठती कब है, वो जाती कब है, वो सोती कब है, उसको खाना नहीं बनाना आता, वो नहीं आता, और तनकीद करते रहते हैं। अगर वो घर वाले ये सोच लें कि ये घर को छोड़ के आई है, वैसे तो हमें बहुत तरस आता है दूसरों पे जिसको हम यतीम देखते हैं, या अगर कोई दूसरे मतलब परदेश में कोई शख्स आया हो, लेकिन आप देखिए कि अपने ही घर में जब बहू आती है तो वो कैसे है। मुझे तो बिल्कुल ऐसे महसूस होता है कि एक बच्ची एक घर से दूसरे घर में आती, वो ऐसे जैसे एक पौधे को आप कहीं से उगाएं और फिर उसको उसको जड़ों से उखाड़ के दूसरी जगह लगाना चाहें। कभी आप लोगों ने ये किया होगा, प्लांटिंग, पनीरी लगती है, पौधा एक जगह से करता है, कच्ची कच्ची जड़ें होती हैं, कितनी हिफाजत से माली उसको कहता है कि देखो इसको यहाँ से उठाओ और वहाँ लगा दो, और उसके बाद फिर वो वहाँ से यानी आगे, यानी उसके शुरू के दिन बड़े मुश्किल दिन होते हैं ना। तो बच्ची को अगर ये सोच लिया जाए ना कि ये एक कच्ची कोंफल है और इसको अब हमने अपने आंगन में उगाना है, जितनी आप उसको मोहब्बत देंगे, जितनी आप उसको केयर देंगे, आप देखिए वो तो अपनी जान भी आप पे लगा देगी। हमारे यहाँ मामला क्या होता है कि बाज दफा बहू को सौकन के दर्जे पे ले आया जाता है, हर चीज में तकाबुल किया जाता है, मुकाबला किया जाता है, ये घर मेरा है, ये तेरा है, वो है, ये है, पहले मोहब्बत देंगे फिर मिलेगी। ये दुनिया जो ना ये गिव एंड टेक पे आता है। अगर हम अपने बच्चों की शादियां करते हैं या अपने भाइयों की शादियां करते हैं तो दिल बड़े करके उनको बताइए क्या इस घर में आपके लिए खुली जगह है, दीदा और दिल से आपको बना रहे हैं। फिर इसी तरह दूसरी तरफ भी देखना चाहिए कि वो बच्ची जिसको एक सास चुन के लाई, उसको उसने पसंद किया, क्या फिर वो उसकी दुश्मन होगी? क्यों आप कहा जाए, कह जाता है कि ससुराली जो वो इसराइली होते हैं, यानी मैंने खुद सुना है कि ससुराल को लोग ससुराइली यानी इसराइली भी कहते हैं, कि ये ऐसी है और ऐसी है और इस तरीके की बात है, और लड़की को एक एहसास होता है कि मैं दुश्मनों के नरगे में जा रही हूँ और वहाँ मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। तो लिहाजा दोनों तरफ जब बात होती है तो फिर उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बात समझ आती है। तो मकसद सारी बात का ये है कि जहाँ अल्लाह का खौफ होता है वहाँ इंसान वाकई इस चीज़ को महसूस कर लेता है और इसको अच्छी तरह से लेकर। बातें तो हमारे पास बहुत सारी हैं इस मौजू पे, यानी मेरे पास तकरीबन कोई 22 के करीब पॉइंट्स जमा किए हुए हैं हाउ टू बी अ सक्सेसफुल वाइफ, लेकिन चूंकि हमारा आज का वक्त पूरा होने वाला है मैं उसको शुरू नहीं करना चाह रही। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम कुछ चीज़ें मज़ीद इसमें भी देखेंगे, और रह भी गई तो कोई बात नहीं, मौके बहुत सारे ज़िंदगी में भी आएंगे और हम इसको साथ साथ लेके चलेंगे। तो एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहे हैं आपको इस मौजू में कि इस्लाम में फैमिली लाइफ की क्या अहमियत है। अगर हम वाकई गौर करके देखें तो इस्लाम जो है हर चीज़ को दिखाता है, तो फैमिली लाइफ इन इस्लाम अगर हम इसको देखें तो दो चीज़ें हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट्स एंड एक्सटेंडेड फैमिली, और ये हकीकत है कि इन सबके ताल्लुकात के साथ ही घर बनता है। इसके बारे में आप देखिए कि कुरान पाक ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से यानी हमारी रहनुमाई की है कि किस तरीके से उसने हमें एक ही जोड़े से पैदा किया। ओ मैन काइंड, वी क्रिएटेड यू फ्रॉम अ सिंगल पेयर ऑफ मेल एंड मे फीमेल एंड मेड यू इन टू नेशंस एंड ट्राइब्स। ये सूरह हुजरात की आयतें हैं कि अल्लाह ताला ने ख़ानदान के निज़ाम को इतनी अहमियत दी कि उसका जिक्र कुरान पाक में पेश किया। यहाँ हम देखेंगे कि हस्बैंड और वाइफ का आपस में कैसे रिलेशन है। तो पहले देखिए कि एडम एंड ईव सबसे पहला पेयर जो बना वो इनका था। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्पाउस एंड डिवोर्स एंड विडोहुड एंड पॉलीगैमी, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रखा, और ये सूरत रूम ही की आयतें हैं जिसमें हम इसको देखते हैं कि क्या अल्लाह ताला ने मोहब्बत और रहमत हमारे दिलों में डाल दी कि हम एक दूसरे के हकूक अदा करें। सबसे पहले अगर हम एडम और ईव के ताल्लुक से देखें तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद जो चीज़ बनाई आदम हव्वा को, उसकी वजह ही ये थी कि उनकी तन्हाई दूर की जाए और उनको एक साथ दिया जाए। उसका जिक्र कुरान पाक में कई जगह पे आता है जिसमें अल्लाह ताला ने रखा। कभी आपने इस बात पे गौर किया कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में तन्हाई क्यों नहीं भेज दिया? फितरत के ख़िलाफ़ है। इंसान जितना कंफर्टेबल अपनी बीवी के साथ महसूस करता है उतना किसी और रिश्ते के साथ नहीं करता, ख़ास तौर पर जब वो बहुत इंजॉयमेंट के मूड में होता है, लेयर मूड में। तो ये चीज़ भी हमें कुरान पाक से मिली। थोड़ी सी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्पाउसेस देखेंगे, बीवियों के हकूक क्या हैं और मर्दों के क्या हैं। तो पहली बात क्या है, राइट ऑफ द वाइफ, राइट्स ऑफ द वाइफ, यानी यहाँ वुमेन फर्स्ट यानी कि औरतों के राइट्स क्या हैं, तो पहली बात क्या है कि टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी मैरिज प्रपोजल, यानी आप देखिए कि औरत को पहला हक क्या मिला कि प्रपोजल जो उसके पास आया चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर ले चाहे छोड़ दे। कितनी बड़ी ये बात है, यानी ज़बरदस्ती नहीं थोपा गया। और जब भी किसी लड़के का रिश्ता आए तो उसके ऊपर यानी इख्तियार है कि लड़की की मर्जी के साथ उसको एक्सेप्ट किया जाए। दूसरी चीज़ क्या है, टू रिसीव मेहर अ गिफ्ट फ्रॉम दी हस्बैंड, यानी दूसरी चीज़ हक मेहर जो शादी में मर्द की तरफ से इस चीज़ का इजहार होता है कि ये इस निभाव में सच्चा है। टू बी ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, कि मर्द उसके साथ रिस्पेक्टफुल रहे और उसके साथ नरम रहे। टू बी प्रोवाइडेड विद फूड शेल्टर एंड क्लॉदिंग, यानी बीवी को खाना उसका रहने का इंतज़ाम कपड़े मर्द के ज़िम्मे हैं। टू पोजेसिस पर्सनल प्रॉपर्टीज, टू एक्वायर एजुकेशन एंड टू सीक एम्प्लॉयमेंट, यानी ये भी औरत का राइट है कि उसकी अपनी जायदाद वो उसी की रहे, और वो औरत जो है यानी अगर कोई नॉलेज लेना चाहती है तो मर्द को उसकी हेल्प करनी चाहिए। टू बी कंसल्टेड बिफोर एनी मेजर फैमिली डिसीजंस, यानी कोई मर्द अपने घर के या ख़ानदान के जो बुनियादी ये फैसले वो मर्द बीवी के बगैर नहीं कर सकता, मशवरा लेना चाहिए। राइट्स ऑफ दी हस्बैंड, टू बी ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, यानी बीवी रिस्पेक्ट भी करे और काइंड भी हो। टू हैव हिज प्रॉपर्टी सीक्रेट्स एंड प्राइवेसी सिक्योर्ड बाई हिज वाइफ, यानी अच्छी बीवी की बात क्या है कि वो शोहर के राज दूसरों के साथ शेयर ना करे। टू हैव द फाइनल से इन मेजर फैमिली डिसीजंस आफ्टर कंसल्टेशन, टू मैरी अप टू फोर वाइफ्स प्रोवाइडेड ही अवॉइड बाई ऑल कंडीशंस। नेक्स्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज उन्हीं के आगे और हैं। ड्यूटीज अब देखिए कि हस्बैंड्स की, अब पहले क्या थे राइट्स थे, अब क्या हैं ड्यूटीज। पहली ड्यूटी हस्बैंड की क्या है कि टू गिव मेहर अ गिफ्ट टू हिज वाइफ, टू ट्रीट हिज वाइफ विद द काइंडनेस एंड द रिस्पेक्ट, टू प्रोवाइड हिज वाइफ एंड फैमिली विद फूड शेल्टर क्लॉथिंग एंड अदर, यानी उधर जो बीवी के राइट थे वो शौहर के अब यहाँ फर्ज हो गए। और इसी तरह बीवी के साथ कंसल्ट करे कोई बात करते हुए। बीवी की ड्यूटीज़ क्या है, ये बड़ा अहम है हम सबके लिए, इसको तो हम ज़रूर सुने और समझें। पहली बात क्या है कि हस्बैंड को काइंडनेस और रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट करे। दूसरी बात क्या है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करे, यानी उसके ख्यालों में, उसकी ख्वाहिशात में, उसके हकीकत में उस शोहर के अलावा किसी और का ख्याल ना आए। फिर शोहर के सीक्रेट्स को पूरा करे, यानी उसको निभाए, यानी किसी को बताए ना। और इसी तरह ख़ास तौर पे जो उनकी को प्राइवेट बातें हैं तो वो दूसरों से डिस्कस ना करे। फिर इसी तरह शोहर के घर के जो हाउस होल्ड्स हैं उनको मैनेज करे, घरदारी बीवी का जिम्मा है। आज के दौर में ये भी बात सुनी जा रही है कि जी कहाँ लिखा है कि बीवी घर का काम करे, पता नहीं लोग कहाँ से कुरान पढ़ते हैं या कहाँ से सीखते हैं। बहरहाल फिर उसके बाद अपना रोल एज अ मदर और चाइल्ड के साथ अपने रोल को फुलफिल करे। और फिर अब उसके बाद ये है कि अगर कोई हस्बैंड ने उससे मशवरा करके डिसीजन लिया तो उसको मान ले। नेक्स्ट, अब यहाँ डिवोर्स की बातें हैं, विडोहुड, उसके बारे में भी आप देखिए कि कुरान पाक में मुख्तलिफ जगह पे रहनुमाई मौजूद है। ये बताता है कि इस्लाम ने सिर्फ आम अच्छे दिनों में गाइड नहीं किया बल्कि दूसरे दिनों में भी जबकि हालात ख़राब हो जाएं। नेक्स्ट, पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा शादियां करना, इस्लाम ने बस हालात में इसको भी अलाउ कर दिया कि एक मर्द 4 शादियां कर सकता है, लेकिन उसमें इंसाफ और अदल की अहमियत यानी ये शर्त के साथ। नेक्स्ट, पेरेंट्स एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज, अब देखिए कि ये हैं वो रिश्ते जिनके लिए यानी हम बात कर रहे थे, और इंशाल्लाह मौका मिला तो हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे अपने साथ, यानी स्पेशल स्टेटस फॉर मदर चिल्ड्रन एंड एल्डरली। यानी वही बात है कि आप देख रहे हैं कि ख़ानदान के नाम पे इस्लाम ने हमें कितना खूबसूरत सिखाया है, दूसरे मजाहब में ऐसा नहीं। अभी 2 वीक पहले मैं किसी लेडी के साथ थी तो वो कन्वर्ट हुई हैं, तो वो बता रही थी कि इस्लाम हमें इन सारी चीज़ों, क्रिश्चियनिटी में हमें ऐसी कोई गाइडेंस नहीं मिलती, और वो बड़ी अच्छी एक लाइफ गुजार रही है फैमिली के साथ और बच्चे भी हैं और उर्दू बोलती है इतनी अच्छी। इंशाल्लाह कभी आपको मिलाएंगे जी। नेक्स्ट, सोशल स्टेटस फॉर मदर्स, फिर आप देखिए कि अगर बीवी होने के नाते थोड़ा सा दबना पड़ता है तो क्या हुआ, माँ बनते ही वो दर्जा ऊपर हो जाता है। बाज़ औरतों को बड़ा गुस्सा आता है ना, हमें नीचे और मर्द को ऊपर दर्जा क्यों दिया, तो कोई बात नहीं, आप माँ बन जाए आप उसे 3 गुना ऊपर हो जाएंगे। वजह क्या है, शादी में मर्द इस्तेमाल खर्च करता है, मर्द पैसा लगाता है, तो उसकी वजह से उसको यानी सुनना पड़ेगा उसकी बात, और माँ बनने में माँ ज़्यादा तकलीफ सहती है तो उसका दर्जा आगे। नेक्स्ट, चिल्ड्रन, बच्चों का भी कुछ है हक के नहीं, मासूम बच्चे। अच्छा जी, बच्चों के हकूक जो है इस पे हम बात कुछ कर भी चुके और कुछ करेंगे, लेकिन वही बात है कि इनके राइट्स देने की ज़रूरत है। चलिए, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान करे और ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएं। इनका सवाल बड़ा अहम
आमीन।
है कि मतलब बाज़ दफ़ा आजकल शौहर चूँकि कोऑपरेटिव होते हैं तो हेल्प कराते हैं, तो उसमें बच्चियों को शावर दिलाना या
छोटे
उनको
बच्चे होते हैं,
छोटे
हाँ
बच्चे
हयाई
हैं
की
पैम्पर
क्लास
चेंज
में तो
करना,
हर चीज
हया
दिखाई
का
देती
तकाजा ये है कि बच्चियों को नहीं, यानी कम से कम इस हद तक ना उनको इस्तेमाल करें। मैंने किसी बाप को देखा था कि वो बेटी का पैम्पर बदल रहा था, और यकीन करें कि मैं, मेरी हया से ये हालत थी कि मैं वहां बैठ नहीं पा रही थी, कि छोटी बच्ची हो या बड़ी हो, कल की जवान बच्ची होगी। अब देखें कि जब बच्चियां बड़ी होती हैं तो माएँ महसूस करती हैं ना कि हमने इनको बचपन से देखा हुआ है, तो जब वो बच्चियां बड़ी होंगी तो शोहरों के भी दिल में इससे सख्त अवॉइड की जरूरत। इसी से मेरी इन रिश्तों का तकद्दस ख़त्म हो रहा है। और हेल्थ अगर डिस्कस करना है तो माँ, अल्लाह ताला सलामत रखे माँ को, वो माएँ बताएं बच्चों को पीरियड्स के मसाइल या ये कुछ होना है। आज यही मसला हुआ कि हमने इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर दी, बाप बहन भाई बेटे किसी का कोई लिहाज नहीं। एक वक्त था कि इंसान कभी इस मौजू पे बात नहीं करता था, घरों में पीरियड्स हुए होते थे, किसी को अपनी औरतों तक को नहीं पता, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक यही आदत मौजूद है, किसी को कहने जिक्र की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही लोग समझ जाएंगे, साथ रहने ले समझ जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स लोग आज देखिए कितना खुले हम बात करते हैं। असल तकद्दस इतनी खूबसूरत एक यानी डोरी है दो लोगों के बीच में, जब ये टूटता है, इवन आप देखिए कि शोहर और बीवी के बीच में जब तकद्दस ख़त्म हो जाता है ना, तो वो फिर इंसानियत के दर्जे से गिरने लगते हैं। बहुत अवॉइड की जरूरत है ऐसी चीज़ों की। और फिर देखिए ये मसला कब हुआ कि माँ घर पे नहीं, माँ कहाँ है, जॉब पे है, कई घंटे, चलो 1 घंटे के लिए कहीं गई है, आके बदल लेगी, घर में कोई दूसरी खातून है वो बदल देगी शावर, क्या इतना ही जरूरी है शावर दिलाना? अगर माँ वाकई मजबूरी तो रात को दिला दे बच्चों को जब घर में हो, लेकिन सख्त बेहयाई की बात है ये। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।